समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, कार्यक्रम परिक्रमा में आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में लाएंगे आप तक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ खास है उनके पास। खेल के मैदान की हलचल भी होगी और आर्थिक जगत पर भी रहेगी हमारी नजर। इसके अलावा बात करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तित्वों की भी जिनकी है आज पुण्यतिथि या जयंती या फिर जन्मदिन, और आज है एक विशेष दिन, उसके बारे में बात करेंगे डेटलाइन में। जी हां, आज है अर्थ डे यानी पृथ्वी दिवस। सुंदर सा ग्रह जिस पर हम रहते हैं उसके बारे में विस्तार से बातचीत करेंगे आज के इस अंक में। मैं हूं जागृति शर्मा और मेरे साथ हैं अनुजा कुमार। अनुजा, आपको भी मेरा नमस्कार।
नमस्कार एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून जागृति। Jagriti, what a great start to a day when early in the morning we got the news of the 17-year young D. Gukesh making history as he became the youngest player in the world to win the FIDE Candidates Chess Tournament 2024 champion. Certainly a great time for chess in India, earning him the right to challenge the chess world champion Ding Liren. This achievement surpasses a record set by the legendary Garry Kasparov 4 decades ago. Congratulations from the Akashvani family, Gukesh. You have made us all extremely proud, wishing you the very best in your future games and matches. Jagriti, chess, once considered a niche game, is now gaining immense popularity in India. And with a rising number of ardent fans and exceptional players, the sport is making waves on the global stage. India is ranked number 2 in the world in international chess, showcasing the country's strong presence in the game. And now, moving on, let me now get you all the news-making headlines at this hour. President Draupadi Murmu to confer Padma Awards at Rashtrapati Bhavan this evening.
लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए सभी राजनीतिक दलों के शीर्ष नेता लगातार रैलियां कर रहे हैं। तीसरे चरण के लिए नाम वापसी का आज अंतिम दिन।
रीपोलिंग अंडर वे एट 11 पोलिंग स्टेशन अंडर इनर मणिपुर पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी।
सर्वोच्च न्यायालय ने 14 साल की गर्भवती दुष्कर्म पीड़िता को गर्भपात कराने की इजाजत दी।
In chess, India's 17-year-old grandmaster D. Gukesh surpasses record of Garry Kasparov to become the youngest ever world championship contender.
और IPL क्रिकेट में आज जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से।
And Jagriti, it's now time for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at national or global level, and today we will talk about World Earth Day. Today is World Earth Day. Jagriti, our planet, the only home we have, is at a breaking point. Two-thirds of our Earth's oceans and three-quarters of its land have been damaged by humans. 1 million species could vanish by 2050. So every year, on 22nd of April, Earth Day is celebrated, which marks the anniversary of the birth of the modern environmental movement in 1970.
जी, पृथ्वी दिवस की शुरुआत संयुक्त राज्य अमेरिका में 22 अप्रैल 1970 को कैलिफोर्निया तट पर बड़े पैमाने पर तेल रिसाव के कुछ महीनों के बाद हुई थी। इस आयोजन के पीछे का विचार अमेरिकी सीनेटर गिलार्ड नेल्सन और हार्वर्ड के छात्र डेनिस हेज का था। ये हमारे पर्यावरण को संरक्षित करने और बनाए रखने के महत्व को याद दिलाता है और दुनिया भर के लोगों से एक स्वस्थ ग्रह और बेहतर कल के प्रयासों में एकजुट होने का आग्रह भी करता है।
Yes, Earth Day now brings together citizens and activists from around the world to raise awareness and take action regarding such environmental concerns as global warming and renewable energy. And today, the Earth Day Network, which brings together more than 20,000 partners and organizations in 190 countries, supports the Earth Day mission year-round. Earth's natural resources include air, water, soil, minerals, fuels, plants, and animals. Conservation is the practice of caring for these resources, so all living beings can benefit from them now and also in the future. All the things we need to survive, such as food, water, air, shelter, come from these natural resources. Some of these resources, like small plants, can be replaced quickly after they are used. Other resources, such as fossil fuels, cannot be replaced at all. Once they are used up, they are gone forever. So these resources need to be taken care of.
बिल्कुल. और पृथ्वी का ख्याल हम खुद भी छोटे छोटे स्टेप्स हैं उनको अगर हम ध्यान में रखें तो रख सकते हैं. जैसे हम अपने घरों में पानी का जो इस्तेमाल है लगातार इस पर कहा भी जाता है, अभी गर्मियों के दिन है, पानी का इस्तेमाल उतना ही करें जितना की जरूरत है. छोटे छोटे पौधे हैं घर के आसपास या घरों में आप वो लगा सकते हैं. इसके अलावा जो हम बहुत ज्यादा उपभोग वाली जो संस्कृति हमने अपनाई है उसके बाद कहीं न कहीं जो हमारी पृथ्वी है उसको नुकसान बहुत ज्यादा पहुंचा है. और अभी आपने जिक्र किया था कि हमारी पृथ्वी के दो तिहाई महासागर और तीन चौथाई जो भूमि है वो हमारे ही वजह से कहीं न कहीं डेवलपमेंट की वजह से वो क्षतिग्रस्त हो चुकी है. 2050 तक 10 लाख प्रजातियां लुप्त हो सकती हैं ऐसा भी कहा जा रहा है. और लुप्त वही प्रजातियां होती हैं जिनका खास ख्याल नहीं रखा जाता है या फिर उन पर कोई संकट आ जाते हैं. तो ऐसे में हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जीवन तो अनमोल है ही, लेकिन जो भी पृथ्वी पर रह रहे हैं उन सबका अधिकार है इतने सुंदर ग्रह पर रहने का.
राइट जागृति. द ऑनगोइंग डिस्ट्रक्शन ऑफ द प्लैनेट्स बायोडायवर्सिटी ऑल्सो क्विकेंस क्लाइमेट चेंज एंड मेक्स अस इवन मोर वल्नरेबल टू इट. दिस इज बिकॉज द इकोसिस्टम सच एज फॉरेस्ट्स प्रोवाइडिंग हैबिटेट्स टू अदर स्पीशीज ऑल्सो एब्जॉर्ब आवर ग्रीन हाउस गैसेज. क्लाइमेट चेंज इन टर्न ऑल्सो हार्म्स बायोडायवर्सिटी, मेकिंग दीज टू चैलेंजेस टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन. And to make matters worse, damage to our ecosystems also threatens human health by diminishing our sources of food, medicine, water, and even oxygen. And by encroaching into wild habitats and exploiting the creatures within them, we also risk new diseases jumping from animals to humans, just as we saw the COVID-19 did for us.
बिल्कुल. जब भी ऐसी आपदाएं आती हैं, चाहे वो आप देखिए कि फ्लड्स हो या फिर सूखा हो या फिर कोरोना महामारी का आपने जिक्र किया, तो कहा जाता है ना कि प्रकृति अपना जो संतुलन है वो खुद बैठाती है. मनुष्य जब लगातार विकास कर रहा है, विकास के क्रम में जब वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भूल जाता है, तो पृथ्वी या जो हमारा पूरा नेचर है वो उसे ध्यान दिलाता है कि संतुलन भी एक चीज है. यहां पर जैव विविधता का भी ध्यान रखना है और यहां जितनी भी प्रजातियां हैं जो संवेदनशीलता हमें अपने लिए याद रखनी चाहिए, जो हम रखते हैं वो हमें उनके लिए भी याद रखनी है.
इनफैक्ट वी आर ओवर एग्जॉस्टिंग द फर्टाइल सॉइल एंड वी आर लूजिंग टू इरोजन बिकॉज ऑफ पुअर फार्मिंग प्रैक्टिस एंड फ्यूल सप्लाईज आर ऑल्सो गेटिंग डिप्लीटेड. वाटर एंड एयर आर गेटिंग पोल्यूटेड. द पॉपुलेशन of human beings has grown enormously in the past two centuries. All these needs are valid, but sometimes the plants and animals that live in the area are forgotten. The benefits of development need to be weighed against the harm to the animals that may be forced to find new habitats, the depletion of resources we may want in the future, or damage to resources we use today. So we need to take care of all of these. Development and conservation can coexist in harmony when we use the environment in ways that ensure we have resources for the future. इट इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. आपने अभी इसके भी जिक्र किया था.
जी बिल्कुल. विकास और संरक्षण एक साथ मिलकर भी रह सकते हैं और इसके लिए जरूरी है कि हम हमारी जो भी पुरानी चीजें हैं, प्रैक्टिसेस हैं, उनमें थोड़ा सा बदलाव लेकर आए. टेक्नोलॉजी का जमाना है, एआई हमारे पास है, तो उसका बेहतर उपयोग करें. क्योंकि जब बहुत ज्यादा मैक्सिमम किसी भी चीज का यूज होता है तो वो कहीं न कहीं हमें विध्वंस की ओर लेकर जाता है. लेकिन हमें इसी ग्रह पर रहना है और अच्छे तरीके से रहना है, सबको मिलजुल कर रहना है. तो जैव विविधता का ख्याल रखते हुए सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर ध्यान देना होगा ताकि जो संसाधन आज हमारे पास हैं वो भविष्य में भी हमारे पास रहें और हम उनका बेहतर उपयोग कर सकें.
राइट सर. एंड देर आर काउंटलेस वेज टू पार्टिसिपेट इन अर्थ एक्टिविटीज एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एफर्ट्स. लाइक वी कैन plant trees, we can clean up the campaigns. There are clean up campaigns like we can do with the sea, the water around us, and of course for the national parks and all. And we can conduct educational workshops, which surely the students and leaders, they take care of all these things on World Earth Day. And of course, reduce, reuse and recycle. Embrace a lifestyle of minimalism, reduce single-use plastic consumption, and prioritize recycling and upcycling of materials. That is very, very important. So humankind can therefore only survive, let alone prosper, if our world remains biodiverse. So every life form, however tiny it is essential to the whole. So we all must take care of it.
और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास आज के लिए क्या विशेष है.
राइट, एंड वी स्टार्ट विथ तेलंगाना वेयर विमेन वोटर्स होल्ड की इन मेनी कंस्टिट्यूएंसीज फॉर द विक्ट्री. विमेन वोटर्स आर मोर देन देयर मेल काउंटर पार्ट्स इन द इलेक्टर्स एंड द इलेक्शन अथॉरिटीज आर यूजिंग द सर्विसेज ऑफ विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द वोटर्स. वी हैव अ रिपोर्ट ऑन दिस बाय आवर कॉरेस्पॉन्डेंट.
Telangana is one of the few states in the country where women electors surpass their male counterparts. As on date, the state has a total of 3,31,48,527 electors, while more than half, means over 1,66,00,000, are women, taking the men and women ratio to 1,010. Among the total 17 Lok Sabha constituencies in the state, except in four, that is Hyderabad, Secunderabad, Malkajgiri and Chevella, women electors are more than their male counterparts in rest of the 13 Lok Sabha constituencies. Nearly 40% of women voters in the state, that is about 65,00,000, are members of women self-help groups and could play a key role in deciding the results of elections and also can play a major role in promoting the voting percentage. Incidentally, these are the constituencies performed poor while registering lowest poll percentages during the last elections. The election authorities, especially of Secunderabad and Hyderabad, are making use of the services of women SHGs given to their large presence to motivate electors to come to the polling stations. The SHG women members are now interacting with people at their homes and also at their work, giving them voter information, helping them check their name in the voters list and motivating them to exercise their franchise. Lakshmi for Parikrama, Hyderabad.
और लोकसभा चुनावों के दौरान राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुख निर्वाचन क्षेत्रों की हमारी श्रृंखला में आज हम कर्नाटक के बेंगलुरु ग्रामीण लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र पर एक रिपोर्ट लेकर आए हैं. आइए सुनते हैं.
बेंगलुरु ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र अपने नाम के अनुसार बेंगलुरु शहर के बाहरी सीमा से सटा हुआ है. कर्नाटक के 28 क्षेत्रों में से केवल इस क्षेत्र में कांग्रेस पिछले चुनाव में जीत हासिल कर पाया था. उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के भाई डीके सुरेश ने यहां कांग्रेस के लिए जीत दिलवाई थी. 2,06,870 वोटों के अंतर से डीके सुरेश ने बीजेपी के प्रतिस्पर्धी अश्वथ नारायण गौड़ा को हराया था. पिछले चुनाव में कांग्रेस और जेडीएस का गठबंधन था. बेंगलुरु ग्रामीण क्षेत्र में 8 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिनमें से 5 कांग्रेस ने जीते हैं और 2 बीजेपी द्वारा जीते गए हैं. बाकी 1 विधानसभा क्षेत्र यानी चनपटना में जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी विधायक हैं. इस चुनाव में बीजेपी और जेडीएस का गठबंधन है. कुमारस्वामी के जीजाजी डॉक्टर सीएन मंजुनाथ इस बार बेंगलुरु ग्रामीण क्षेत्र से बीजेपी के उम्मीदवार हैं. इस क्षेत्र में 15 उम्मीदवार हैं. बेंगलुरु ग्रामीण क्षेत्र में 28,02,500 मतदाता हैं. Sudhindra, Akashvani Samachar, Bengaluru.
And if we take you all to Jammu and Kashmir, the fate of 22 candidates will be decided by over 17.81 lakh voters of 5 Jammu, Samba, Riasi Lok Sabha seats in the second phase of general elections to be held on 26th of April. The parliamentary constituency comprises 3 districts including Samba, Jammu and Riasi, and the total eligible voters are 17,81,545. There are 22 candidates in the fray, but the main contest is between BJP and Congress. The seat saw star-studded campaigning by senior BJP leaders, including Amit Shah, Raksha Mantri, Rajnath Singh, among others. On the other hand, for Congress, senior leader Sachin Pilot, Raj Babbar, and senior NC leaders also campaigned for the Congress candidate and 2 times legislator and Congress working president Raman Bhalla.
Jammu Lok Sabha constituency is a political powerhouse renowned for its significant influence in Indian politics. Jammu reflects a diverse demographic and remains a crucial constituency of the Union Territory. The electorate is even more enthusiastic to show the power of their vote. As for the 2024 candidate list in Jammu Lok Sabha constituency, Jugal Kishore Sharma from BJP and Raman Balla from Congress are the prominent candidates. The five Jammu parliamentary constituency is spread over three districts including Jammu, Samba and Riyasi with a total number of 17,81,545 voters, out of which 9,21,462 are males, 8,60,055 are female and 28 transgenders. The constituency has 2,416 polling stations and 18 assembly segments. The Jammu Lok Sabha constituency is one of the 88 segments across the country going to the poll in the second phase. In 2014 and 2019, BJP won the Jammu parliamentary constituency. The sitting Member of Parliament Jugal Kishore Sharma emerged victorious. In the 2019 General Assembly elections, Jammu witnessed a fiercely contested battle. The constituency witnessed 72.49% voter turnout in the year 2019. BJP candidate Jugal Kishore Sharma won the 2019 general election with a victory margin of 3,02,875 votes, securing 8,58,066 votes. Jugal Kishore defeated Raman Balla of Indian National Congress, who got 5,55,191 votes. In 2014, Jugal Kishore Sharma had defeated Congress candidate Madan Lal Sharma. Jugal Kishore Sharma, who won the 2014 and 2019 Lok Sabha election from Jammu, is seeking a third term. This is Ann Gulshan Rana for Parikrama from Jammu.
जम्मू से आते हैं उत्तर प्रदेश की ओर, जहां लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में उत्तर प्रदेश के बागपत में मतदान कराया जाएगा। यहां समाजवादी पार्टी ने अमरपाल शर्मा को आईएनडीआई गठबंधन का प्रत्याशी बनाया है, जबकि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए और राष्ट्रीय लोकदल ने राजकुमार सांगवान को उम्मीदवार बनाया है। बहुजन समाज पार्टी ने प्रवीण बैसला को प्रत्याशी बनाया है। और अधिक जानकारी लेते हैं हमारे संवाददाता से।
बागपत लोकसभा सीट पर 9,70,210 मतदाता 26 अप्रैल को 6 प्रत्याशियों के भाग का फैसला करेंगे। इनमें 5,27,802 पुरुष मतदाता और 4,42,372 महिला मतदाता हैं। बागपत लोकसभा सीट में 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इसमें बागपत जिले की 3 विधानसभा सीटें बड़ौत, बागपत, छपरौली, मेरठ जिले की सिवाला खास तथा गाजियाबाद जिले की मोदीनगर विधानसभा सीट शामिल है। इस सीट पर पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के परिवार का दबदबा रहा है। बागपत में इस परिवार के सदस्य 9 बार सांसद चुने गए हैं, लेकिन पिछले 10 वर्ष से इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है। इस बार भाजपा और रालौद के गठबंधन के बाद बागपत सीट पर समीकरण बदल गए हैं। गठबंधन के बाद रालौद के हिस्से आई इस सीट पर रालौद ने डॉक्टर राजकुमार सांगवान को टिकट देकर चुनाव मैदान में उतारा है। पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता डॉक्टर सांगवान चौधरी परिवार से लंबे समय से जुड़े हुए हैं। इस सीट पर सपा ने पहले अपने पुराने कार्यकर्ता मनोज चौधरी को टिकट दिया था, लेकिन भाजपा रालौद गठबंधन के बाद बदले समीकरण को देखते हुए सपा ने मनोज चौधरी का टिकट काटकर इस सीट से साहिबाबाद के पूर्व विधायक पंडित अमरपाल सिंह को चुनाव मैदान में उतारा है। वहीं बसपा ने प्रवीण बंसल को टिकट दिया है। पंडित अमरपाल शर्मा और डॉक्टर राजकुमार सांगवान दोनों ही गैर जनपद से ताल्लुक रखते हैं। यहां सभी प्रमुख दलों ने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार तेज कर दिया है। आकाशवाणी समाचार के लिए ओम अवस्थी।
And now it's time to take you on a tour of India's freedom struggle and recall events that happened on this day.
On the 22nd of April 1930, revolutionary freedom fighters battled the British forces in the Jalalabad Hills near Chittagong.
Breaking the myth that the British were invincible, Mastardas Surya Sen, with his team of revolutionaries, liberated his hometown from British rule. On the night of 18th of April 1930, Surya Sen and his Indian Republican Army attacked the British strongholds and captured them, thus almost effectively paralyzing the British administration in Chittagong.
A team led by Anant Lal Singh and Ganesh Ghosh, along with Mastada, captured the reserve police lines at Dampara. On the other hand, a team led by Ambika Chakravarti and a woman revolutionary, Preetilata Vaddedar, cut off the telegraph and telephone lines. Thus, the communication of Chittagong was severed from the rest of India.
Another team, led by young Jugantar member Lal Mohan Sen, uprooted the Nangal Kot railway line, effectively destroying chances of any source of help for the British forces. Mastada and his fellow revolutionaries then assembled at the reserve police lines and hoisted the Indian flag, declaring the formation of a provisional revolutionary government. Thus, Chittagong was free for 4 days from the British Raj.
But soon, the British sent reinforcement by road. In the ensuing battle, many revolutionary freedom fighters were martyred, including Harigopal, Bidhu Bhattacharya, Nirmal Lala, Naresh Rai and Prabhash Bal. Ambika Chakravarti and Vinod Bihari Chaudhary were gravely injured. General Loknath, like a wounded tiger, exhorted his comrades, "Fire until the machine guns are completely silent."
The brave sons of the soil fought an honourable battle to the last. The saga of the revolutionaries could be summarised in the lines of the famous poet Faiz Ahmed Faiz.
Jis dhaj se koi maktal mein gaya, wo shaan salamat rehti hai. Ye jaan to aani jaani hai, is jaan ki to koi baat nahi.
22nd April is also the death anniversary of freedom fighter Bishambhar Dayal, who died in 1931.
Bishambhar Dayal was born in Alwar district of Rajasthan in 1893. Right from his initial days, he was committed to the national cause, and that is why he didn't marry in his lifetime. At a young age of 19 years, Bishambhar entered into the revolutionary freedom movement to free the motherland from the shackles of British tyranny.
He was also involved in bombing Viceroy Hastings in Delhi in 1912. Because of this incident, Bishambhar came into the eyes of the British government.
Bishambhar became a member of the Revolutionary Socialist Party and came into contact with Chandrasekhar Azad and Bhagat Singh. It was during this period Chandrasekhar Azad visited Bishambhar Dayal and learned bomb making and other activities from him.
He was planning to rescue Bhagat Singh, Sukhdev and Rajguru, but before any plan could be implemented, Bishambhar was arrested. He was tried in the Delhi conspiracy case and sent to jail. In jail, he was tortured and he succumbed to his injuries on the 22nd of April, 1931.
Coming to the business news of the day, benchmark equity indices extended gains for the second straight session today, following positive global cues as worries over Iran-Israel tensions eased a bit. And in intraday trade, Brent crude was trading at $86.74 per barrel.
और अब चलते हैं खेल के मैदान की ओर और जानते हैं वहां की हलचल. तो सबसे पहले हमने बात की थी खेल के बारे में, शतरंज के
चैंपियन की
भारत के 17 वर्षीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट जीतकर इतिहास रच दिया है और विश्व खिताब के सबसे कम उम्र के वो चैलेंजर बन गए हैं. आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा. कल गुजरात टाइटंस ने पंजाब किंग्स को 3 विकेट से हरा दिया. और अब याद करते हैं उन हस्तियों को जिनकी है आज पुण्यतिथि, जयंती या फिर जन्मदिन. भारतीय महिला राजनीतिज्ञ, समाज सुधारक तथा महिला अधिकारों के लिए कार्य करने वाली कार्यकर्ता कैलाश राधाबाई सुब्बारायण की आज पुण्यतिथि है. उन्होंने अखिल भारतीय महिला सम्मेलन के सदस्य के रूप में काम किया. 1938 में राधाबाई सुब्बारायण निर्विवाद रूप से राज्य परिषद के लिए चुनी गई और इस प्रकार से वे भारत की पहली महिला सांसद बनी.
And Babu Mangu Ram Chaudhary, the Indian freedom fighter, a politician from Punjab and one of the founder members of the Gadar Party, has his death anniversary today. In 1909, he immigrated to the United States. Upon his return to India in 1925, he became a leader of the low caste people, organizing them in opposition to the system of untouchability that oppressed them. He was instrumental in the foundation of the Adharmi movement, an organization dedicated to attaining equality for untouchables. And while in 1946 and 72, he received recognition in the form of a pension and an award for his work towards Indian independence.
प्रसिद्ध कर्नाटक शैली के वायलिन वादक गायक और संगीतकार लालगुड़ी जयरामन अय्यर की आज पुण्यतिथि है। मात्र 12 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने वायलिन वादक के रूप में अपने संगीत करियर की शुरुआत की। उन्होंने वायलिन की एक नई तकनीक स्थापित की जिसे लालगुड़ी बानी के रूप में जाना जाता है। वो ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कर्नाटक शैली के वायलिन वादन को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाई।
And today is also the death anniversary of Shravan, of the Nadeem Shravan duo of musicians who were most successful Bollywood music directors of the 1990s until the early 2000s. They displayed a strong influence of Hindustani, classical, semi-classical music in their compositions and were the only composers during the 2000s who relied heavily on three particular instruments, that is the bansuri, the sitar and the shehnai, in almost all of their songs. And who can forget their unique contribution in Bollywood songs in the movie Aashiqui.
Nazar ke samne jigar ke paas, nazar ke samne jigar ke paas, कोई रहता है वो हो तुम।
This was a breakthrough soundtrack album from Aashiqui, which sold 20 million units in India and became the best-selling Bollywood soundtrack album of all time.
जी, और इस जोड़ी ने लगातार 3 साल फिल्म फेयर अवार्ड भी प्राप्त किया।
And coming to the birth anniversaries now, we
प्रसिद्ध अभिनेत्री, गायिका और फिल्म निर्माता कानन देवी की आज जयंती है। उनका मूल नाम कानन बाला था। भारतीय सिनेमा जगत में कानन देवी का नाम एक ऐसी शख्सियत के तौर पर याद किया जाता है जिन्होंने न केवल फिल्म निर्माण की विधा बल्कि अभिनय और पार्श्व गायन से भी दर्शकों के बीच अपनी खास पहचान बनाई। बगैर प्रशिक्षण हासिल किए कानन देवी ने गायन की दुनिया में प्रवेश किया और अभिनय के क्षेत्र में भी अपनी पहचान बनाई। वे पहली बांग्ला कलाकार थीं जिन्हें भारतीय सिनेमा में उल्लेखनीय योगदान के लिए 1976 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
Also pay tribute to Gangaram, Sir Gangaram. There are few personalities in India and Pakistan who left a legacy as lasting on both sides of the border as iconic engineer and philanthropist Sir Gangaram. Hospitals in Delhi and Lahore, built by his trust and family in his name, continue to uphold his legacy to this day. While Pakistan's Lahore city was his home during the 1947 partition of India, his family moved to Delhi in India. A strict disciplinarian, Gangaram was also known to be a kind-hearted man, and his contributions spanned the fields of architecture, engineering, agriculture, and women's rights.
मशहूर फिल्मकार बलदेव राज चोपड़ा, जिन्हें हम बीआर चोपड़ा के नाम से जानते हैं, आज उनकी जयंती है। उन्हें एक ऐसे फिल्मकार के रूप में याद किया जाता है जिन्होंने पारिवारिक, सामाजिक और साफ सुथरी फिल्में बनाकर लगभग 5 दशक तक सिने प्रेमियों के दिलों में अपनी खास पहचान बनाई। नया दौर, वक्त, हमराज, बाबुल और बागमा जैसी जीवन में रची बसी कहानियों को दर्शाती बीआर चोपड़ा की फिल्में आज भी सिने प्रेमियों के दिलो दिमाग पर अमिट छाप छोड़ती हैं।
An incredible career that lasted more than 50 years saw him make all-time classics, cross new cinema horizons, launch talent like his younger brother Yash Chopra, break new ground and lay the foundation for a successful Indian TV industry like Mahabharat. Born on April 22nd, the magnificent movie giant was given India's highest cinema prize, the Dada Saheb Phalke Award.
उड़े जब जब सुनते थे कवारियों का दिल मचले, कवारियों का दिल मचले, जिंदगी में
चिकने चेहरे और जब ऐसे चिकने चेहरे तो कैसे न नजर फिसले।
श्रोता, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो जागृति शर्मा और अनुजा कुमार को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की दीजिए इजाजत। नमस्कार।